ओम शांति। खुश हैं सभी मधुबन में, माताओं के चेहरे चमक रहे हैं। ठंड तो नहीं है ना? बाबा ने कहा कल सवेरे की मुरली पे चर्चा करेंगे, प्राप्ति स्वरूप हो जाओ। याद आ गई बात? थोड़ी सी कम करना आवाज भाई। जैसे किसी के घर में आप जाएं, वो बहुत साहूकार हो, उसके चेहरे से उसकी साहूकारी, उसके घर से उसकी साहूकारी, खान पान से नजर आती है ना। कोई बड़े पद वाला हो, उसको भी देखकर उसके चेहरे पे रॉयल्टी होगी, अथॉरिटी होगी। हमें कौन मिला है बोलो? अब तो ठंडे हो गए बिल्कुल, इतनी ठंड तो नहीं है। कौन मिला है माताओं को? मिल गया ना भगवान, भाग्य विधाता। तो चेहरे पर श्रेष्ठ भाग्य की झलक दिखाई दे, केवल त्याग की नहीं। याद है ना कि इन्होंने बहुत त्याग किया है। कोई कहे ये बेचारे बड़ी मेहनत करते हैं, बेचारे भी कह दे, लेकिन भाग्य की रौनक इतनी अच्छी हो कि त्याग छुप जाए, त्याग त्याग न रह जाए, त्याग भी भाग्य बन जाए। तो बहुत प्राप्तियां हुई हैं हमें, उसकी प्रैक्टिकल झलक, बहुत खुशी, बहुत खुशी हो। अगर हम यही याद रखें, जीवन में मुझे कौन मिला और जो मिला उसने आकर क्या क्या दिया, वो केवल मिल के दर्शन दे के चला नहीं गया, जैसा हम सब ने भक्ति में चाहा था ना, एक बार तुम्हें देख लें। बाबा की मुरली में आ रहा है, आप सुनेंगे एक दो दिन में। तुम बच्चे कहते थे बाबा एक बार हम आपको देख लें, आप हो कैसे, आप कहाँ रहते हो? मुरली में आ गया, बहुत अच्छी दूरी हम है। तुम बच्चे कहते थे बाबा हम बहुत दुखी हो गए, पतित बन गए, आओ। बाबा उत्तर देते थे हाँ बच्चे सुना, आऊंगा। ऐसी अच्छी दूरी आने मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा, भगवान बातें कर रहा है अपने बच्चों से। सोचा था कभी ऐसा? भगवान अपने बच्चों से बात करेगा, उन्हें राजे बच्चा बनाएगा, महान बनाएगा। आज क्या था सवेरे मुरली में? तुम बहुत बड़े आदमी बनते हो। आया याद? बहुत खुशी होनी चाहिए। तो भगवान को इस तरह प्राप्त कर लेंगे ये कभी सोचा नहीं था। यही सोचते थे ना, एक बार दर्शन हो जाए बस, भक्ति सफल हो जाए, जीवन की यात्रा सफल हो जाए। लेकिन ये थोड़ा ही पता था वो आकर हमें पढ़ाएंगे। भगवान ज्ञान का सागर पढ़ाएगा आकर, और बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी यूनिवर्सिटी में पढ़ने आएंगी, और पढ़कर क्या पाएंगे बोलो ना? माताओं से पूछते, बादशाही पाएंगी। ऐसी कोई पढ़ाई नहीं दुनिया में जिससे राजाई मिलती हो, भगवान की ऐसी पढ़ाई जिससे राजाई मिल रही है, सोचा नहीं था। इन प्राप्तियों को याद करें तो जीवन चमकता रहेगा। छोटी मोटी बातें जो परिवारों में होती हैं ना माताएं, उनका कोई असर नहीं होगा, और केवल ये नहीं असर नहीं होगा बल्कि वो खत्म भी हो जाएंगी। सबको याद रखना है ये बात, मैं बहुत याद दिलाता हूं सबको, परिवार वालों को खास, कुमार कुमारियों को भी। स्थिति श्रेष्ठ, होगी तो परिस्थितियां स्वतः ही बदल जाएंगी। सब पक्का कर दो जीवन में, कुछ भी आ जाए स्थिति को बिगड़ने नहीं देना है, इसको पक्का करना पड़ेगा जरा। और ये जानते हुए कि हमारी स्थिति अच्छी होगी, परिस्थितियां बदल जाएंगी, समाप्त हो जाएगी। कई लोग क्या गलती करते हैं, थोड़ी सी परिस्थिति आई, मुरली सुनना छोड़ दिया। कितना अच्छा काम किया, परिस्थिति खत्म होगी, मुरली से ही तो सुंदर विचार मिलते हैं, बल मिलता है, आंखें खुलती हैं, मुर्दा मनुष्य जिंदा हो जाता है, होता है या नहीं। रोज कई लोग इतना सोते हैं, 8 बजे तक सोएंगे, अमृत वेला मिस, मुरली भी मिस, क्यों, बहुत समस्याएं आ गई जीवन में, तो सोते रहो ठीक हो जाएंगी। और कुछ ऐसी आत्माएं हैं हम में से ही हैं, समस्याएं तो 3 बजे उठेंगे, योग लगाएंगे, 2-4 दिन में समस्या डर के भाग जाएगी, ये तो खतरनाक है, हमारे बस में आने वाला नहीं है, ये होता है, सच है ये बात, इसलिए डेंजरस लोग हैं ये तो। माया से घबराना नहीं है, परिस्थितियां भी माया का स्वरूप है, उससे भी घबराना नहीं है। तो जो प्राप्ति हुई है हमें, चेहरे पर उसकी झलक दिखाई दे, संपूर्ण ज्ञान मिला है, सच्ची राह मिल गई है, ये ढूंढना नहीं है कैसे योग करें, कैसे भगवान से मिलें, मुक्ति कैसे हो, स्वर्ग में जाएं कैसे, ये हम ढूंढ नहीं रहे, ये हमारे उंगलियों पे आ गया ना ज्ञान, इतना गुह्य ज्ञान इतना सहजता से बाबा ने दे दिया, गजब की बात है ये। बहुतों को इस ज्ञान की इस मानता का और गुह्यता का पता नहीं चलता, क्यों नहीं चलता, क्योंकि दुनिया में जो ज्ञान है उसकी खोज नहीं की थी, पढ़ा लिखा नहीं उसको। आजकल तो कौन शास्त्र पढ़ता है दुनिया में, गीता पढ़ता है कोई, अगर आपके शहर में आपको खोजनी पड़े कि गीता की पुस्तक खरीद लाऊं तो शायद किसी बुक स्टॉल पे नहीं मिलेगी, मिलेगी। एक बार कुछ लोग आए थे, बहस कर रहे थे, बहुत 18 लोग थे वो, किसी विशेष समाज से थे, सारे प्रोफेसर और प्रिंसिपल थे, ज्ञान सरोवर में आए, बहस ही बहस करते जाए। कहा तुमने इतना अच्छा ज्ञान दिया है पर वेदों के मंत्र कहीं नहीं लिखे हैं तुम्हारे ज्ञान सरोवर में, बड़े उससे कहते थे जरा भभके से, क्यों आप लोग अवॉइड कर रहे हैं इन्हें। मैं सुन ली उनकी सारी बात, पहले तो सुनना पड़ता है ना ताकि वो खाली हो जाए, अगर सुनेंगे नहीं तो लड़ाई होगी। मैंने कहा कहां से आए हो, मुझे पता तो था, बताया शहर का नाम बताया, हरियाणा का। मैंने कहा ये बताओ हरियाणा के कितने लोगों ने वेद पढ़े हैं, और ढूंढने लगे बेचारे। मैंने कहा चलो पढ़ना छोड़ो, देखे कितनों ने हैं, आप में से देखे किसी ने वेद, कोई नहीं इस सभा से भी। फिर मैंने उनसे पूछा कि अगर पढ़े हो 10-20 ने, उनमें से धारण कितनों ने किया होगा। अब सारे के सारे 18 चुप। जिस ज्ञान को लोग पढ़ ही नहीं रहे हैं, चाहे कितना भी श्रेष्ठ हो, उसे कल्याण कैसे होगा, जिसकी किताबें ही नहीं मिलती। मैं गया दिल्ली में, मुझे शंकराचार्य की जीवन कहानी लेनी थी, दिल्ली की 2 बड़ी किताबों की दुकान है, मैं जानता था उन्हें, गया, चावड़ी बाजार में है एक, बहुत बड़ा स्टोर है, बड़े जेंटिल लोग हैं बेचारे। मैंने कहा शंकराचार्य की जीवन कहानी चाहिए, नौकर को भेजा ढूंढ के आओ, मिली नहीं, मुझे कहा आप ही चले जाओ अंदर भाई। अब उनके स्टोर में मैं चला गया, ऊपर से दिखवाया, मैंने पुरानी सी किताबें रखी थी, मकड़ी खा गई थी थोड़ी थोड़ी, मैंने कहा इनको देखना, तो एक शंकराचार्य की जीवन कहानी मिली, मैंने उनसे पूछा क्यों भाई शंकराचार्य इतना प्रसिद्ध व्यक्ति का आप कई सालों में पहले व्यक्ति हो जो कोई लेने आया हम रख के भी क्या करेंगे आजकल की युवा पीढ़ी को पता है कि गीता भी कोई किताब है पता भी नहीं उन्हें हमारे देश के उपनिषद या दर्शन या भागवत ये सब ग्रंथ हैं किसी को पता नहीं तो जिनका पता ही नहीं उनसे कल्याण कैसे होगा पढ़ना फिर उनपे चलना बाबा ने गुह्य ज्ञान सरल शब्दों में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं अति सरल तुम कौन हो आत्मा खत्म हो गई बात यहीं और इस पे शास्त्र लिखे हुए फिर भी समझ में नहीं आया तुम कौन हो कहां से आए हो बोलो सबसे जो बिना पढ़ी लिखी माता वो बताए कहां से आए हो और सारे वेद खोज डालो किसी को पता नहीं कहां से आए हो ये भगवान का ज्ञान मैं ग्लानि नहीं कर रहा हूं वेद हमारे ज्ञान देश की विद्या है उनको पढ़ लिख कर आज तक भक्ति कामयाब रही है लेकिन सत्य ज्ञान की खोज पूर्ण नहीं हुई कितना बड़ा ज्ञान भगवान ने आकर दिया ज्ञान के सागर ने तीसरा नेत्र खोल दिया ना तो इसकी झलक हमारे चेहरे पर हो खोज नहीं रहे हैं हम पा लिया है ये नशा ज्ञान भी कुछ जानना शेष नहीं रहा है यह बाकी है 7 दिन में ही बहुत प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं मुझे भी याद है मैं छोटा था 36 क्वेश्चन लिखे मैंने खाया दिमाग लोगों का उत्तर मिल गया मैं छोटी आयु से ही पढ़ने लगा था उपनिषद पढ़े थे गीता पढ़ी थी दर्शन पढ़े थे जितना समझ में आता था उनसे क्वेश्चन निकाल के रखे थे यहां आते ही सहज उत्तर मिल गया भटकना नहीं पड़ा मैं एक और अच्छी बात सुना दूं आपको मैं अपने गांव में गया एक बूढ़ा सा व्यक्ति आर्य समाजी हमारी वहां आर्य समाज का ज्यादा प्रचार प्रसार था तो मेरे पास आया दादाजी थे हमारे भी कहा बेटा एक प्रश्न का उत्तर कोई विद्वान नहीं दे पाया मुझे आज तक आपके पास आया हूं शायद आप दे दो ये जो ओम है इसमें 3 तो लाइनें हैं ना और ऊपर है चंद्र का आकार बना के बिंदी का इन तीनों की तो सब व्याख्या करते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर पर ये बिंदी का क्या मतलब है मैंने कहा क्यों आप आर्य समाज में तो बहुत अच्छे अच्छे विद्वान है क्योंकि हम भी आर्य समाज में जन्मे थे बहुत अच्छे अच्छे विद्वान है किसी ने उत्तर नहीं दिया नहीं मैंने कहा सहज उत्तर है ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचने वाला निराकार परमात्मा है उसको बिंदी के रूप में दिखाया है ऐसा खुश हुआ आप समझ नहीं सकते उसने चारों ओर प्रचार कर दिया अरे हमारा छोटा सा लड़का कितना अच्छा उत्तर दिया बड़े बड़े विद्वान कुछ नहीं बता पाए मुझे उसको तो इतनी मस्ती चढ़ी सबको बताए जहां जाए उनको बताए कितना सरल ज्ञान दिया बाबा ने सुनते हैं ना मुरली में ब्रह्मा विष्णु शंकर को तो दिखाते हैं पर तीनों के जो ऊपर है 3 के ऊपर भी तो होना चाहिए किसी कंपनी में 3 मैनेजर हों चलेगा काम 1 उनके ऊपर भी होता है तो सत्य ज्ञान की झलक जीवन में रहनी चाहिए माताओं को जगह न मिले आगे आ जाना भाई भेज दो आगे ये माताएं हैं प्राप्तियां कितनी खुशी लेकर आए बाबा सबके जीवन में खुशियां छा गई हैं हुआ या नहीं जब माताएं परेशानियों से दब दब कर बूढ़ी हो गई थी उनके चेहरों पे भी रौनक आ गई देख रहा हूं मैं यहां किसी को बहू ने तंग किया किसी को सास ने सताया पति ने सताया ससुर ने गालियां दी बेचारी मर मर के जी रही थी माताएं मुझे बड़ी दया आती है चेहरे चमक गए, देखो दांत भी नहीं है फिर भी चेहरे चमक रहे इस माता के दूसरे नंबर की, कितने खुश है ना, बहुत खुश। वाह, जीवन में रौनक ला दी भगवान ने, जिन्हें कोई पूछता नहीं था। बच्चे पोतरे सोचते थे बिना पढ़ी लिखी दादी हमारी, ये क्या जाने, पुराने जमाने की है, इनको क्या पता। युग बदल गया है, कंप्यूटर युग आ गया, मोबाइल युग आ गया है, उनके जीवन में रौनक आ गई ना, आई या नहीं? भाइयों के में आई, मैं माताओं को ही पूछ रहा हूँ, आई? या समस्याओं के बोझ तले दबे हैं? जिम्मेदारियां, बहुत अच्छा अनुभव करके देखें सभी, अपनी जिम्मेदारियों का बोझ बाबा को अर्पित कर दो। भगवान सर्वशक्तिमान, कहीं भी चिंताएं हो, क्या करूं ये दुविधा आ जाए, क्या होगा ये भय पैदा हो जाए, दे दो ऊपर, संभालो तुम, संभालेगा या नहीं? कुछ माताओं के चेहरों पे चिंताएं दिख रही है मुझे, संभालेगा या नहीं? उसने खुद वायदा किया है। मुझे बाबा का महावाक्य बहुत प्रिय लगा था, बात बहुत पहली है, शायद 35 साल पहले का है। मन के बोझ सारे बाप को अर्पित कर दो, और आगे लाइन थी, जो बाप सारे संसार का बोझ उठाने वाला है, क्या वो अपने बच्चों का बोझ नहीं उठाएगा? चिंतन करना, भगवान मांग रहा है दोना चिंताएं मुझे, क्यों लिए घूम रहे हो ये बोझ, ये गठरियां सिर पर, दे दो मुझे। परिणाम देखना, प्रयोग करो, रोज एक प्रयोग करो, एक तो कम से कम है ना, रोज एक अनुभव करो, कोई बात आई बाबा से बात करो, तुम संभालो इसे और देखो चमत्कार। सबको करना है ताकि बोझ मन पर रहे नहीं, तब तो खुशियां छाई रहेंगी, नहीं तो हर चीज का इफेक्ट आएगा जीवन पर। हमें सहज योगी बनना है, मुरली में था ना यही सहज योग। और गुह्य बात ये भी है, जो सहज योगी वही बनेंगे विश्व राज अधिकारी, मुरलियों में ये बात भी आती रही है। जो कर्म करते योग युक्त रहते हैं वे हैं महावीर। बुद्धि काम में लगी रहती है ना, वहां से हटा के ऊपर लगा देना सर्वशक्तिवान में, बहुत बड़ी कला हो गई ना, बुद्धि को डबल काम देना, काम में भी लगे और शिवाबा में भी लगी रहे। ये बुद्धि योग, ये राजयोग, गीता में इसके बारे में लिखा गया लेकिन कोई इसको कर नहीं पाया है। अर्जुन, बुद्धि मेरे स्वरूप पर स्थिर रखते हुए कर्म करो, आगे कोई सिखा नहीं पाया वहां, बाबा ने हमें सिखा दिया है। मेरा स्वरूप क्या है, मैं हूं कहां, उसके स्वरूप पर बुद्धि रखते हुए, बुद्धि नेत्र है ना हमारा, तीसरा नेत्र, जिसे तीसरे नेत्र से उसे देख रहे हैं और कर्म नीचे कर रहे हैं, ये बहुत सुंदर प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इजी योगी बनना है, बहुत अच्छी मुरली आप सभी सुनेंगे 17 तारीख को, अगले संडे, 6 दिन और हैं, अच्छी तरह नोट कर लेना उसकी बातें, और नोट ही नहीं करना, उन चीजों को प्रैक्टिस में लाना, कैसे बाबा से सारा दिन अलग अलग संबंधों से सुख प्राप्त करें। बहुत अच्छी बात कही बाबा ने, बच्चा बना लो, मुझे बहुत प्रिय लगी। भाई लोगों को तो आता नहीं, माताओं का विषय है, बच्चा बना लो, क्यों माताओं का विषय है? बाबा ने कहा जैसे माताएं छोटे बच्चों को गोद में लेके बात करती रहती है ना, उनसे वो सुनता है या समझता है वो नहीं, उनसे बात करके आनंदित होती रहती हैं, अभी बच्चा बोलता नहीं, 2 साल का है, लेकिन उनसे बात कर रही है, मजे से प्यार दे रही है उन्हें, बच्चा भी उस प्यार को लेके आनंदित हो रहा है, बाबा को बच्चा बनाकर गोद में बैठा कर ऐसे ही बात करो। माताएं तो कर लेंगी ना, भाइयों को थोड़ा मुश्किल होगा, कुमारों को तो और मुश्किल होगा थोड़ा सा, करो मजा आ जाएगा। तो बाबा ने भिन्न भिन्न स्मृतियां याद दिलाई, अकेलापन फील करो, दोस्त बनाकर साथ चलो घूमने, बात कर लो, निराश हो जाओ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, इससे अपनी निराशा को खत्म करो। बहुत सुंदर बातें आप सुनेंगे तभी मजा आएगा खूब। तो हमें सहज योगी बनना है। मुरली कल की याद होगी आपको, मेहनत करते हैं पुरुषार्थ में, एक है नेचुरल ब्यूटी के लिए बताया ना, मेकअप करके ब्यूटी को बढ़ाते हैं, दूसरे नेचुरल ब्यूटीफुल होते हैं, उसका अलग महत्व है ना। तो हम पुरुषार्थ करें, बहुत मेहनत करें, इससे मुक्त होने की विधि है जो बाबा ने हमें स्मृतियां दिलाई हैं, उनको याद करते रहे, बस इसको समझना है। बहुतों की समझ से परे की है ये बात कि योग में मेहनत नहीं करेंगे तो कैसे काम होगा, लेकिन स्मृति स्वरूप होना उसकी मेहनत नहीं है, पर उसका बार बार का अभ्यास है। जैसे बाबा ने स्मृति दिलाई, तुम विश्व पर राज करते थे, निर्विकारी देवता थे तुम, याद आया या नहीं, सोच लो, याद आया या नहीं। आज बाबा ने कहा तुम बड़े आदमी हो, लगा हम बड़े हैं या बिना पढ़े लिखे, गरीब घर में पैदा हुए, बड़े कहां, क्या बोलो हैं बड़े आदमी, हम तो टेलरिंग करते हैं, बड़े आदमी कहां है। ये नहीं, भगवान ऐसे ही थोड़ा ही कह रहा है तुम बड़े आदमी हो। संसार की महान आत्माएं जिनका भगवान से मिलन हुआ, हमने उसे नहीं ढूंढा, उसने हमें ढूंढ लिया, हम तो ढूंढ ही नहीं पाए, 2 युग से ढूंढ रहे थे, उसने ढूंढ लिया हमें, तो बड़े आदमी हो गए ना। महान आत्माएं जिनका भाग्य स्वयं भगवान चमका रहा है, तो बड़े आदमी हो गए। तो बाबा स्मृति दिलाता है, जिसको जितनी याद आ जाए, स्मृति का अर्थ है याद आ जाए, उतना ही उसका स्वरूप बन जाएंगे, सब कुछ सहज हो जाएगा। कुछ छोटी बातें सीख लें। बाबा ने कहा मैं तुम्हारा हूं, छोटी बात है क्या ये, भगवान हमारा, उसका सब कुछ हमारा, अगर इस याद में रहने लगे तो ये बहुत अच्छी योगयुक्त स्थिति बनाने वाली बात होगी। भगवान मेरा है, हमने कभी सोचा नहीं था कि इतना हो जाएगा, वो मेरा हो जाएगा, उसका सब कुछ मेरा। बहुत गहरी बात जो मैं अब हर क्लास में याद दिला रहा हूं, क्लासेज आजकल ज्यादा करनी पड़ रही हैं क्योंकि तीनों जगह भट्टी चल रही हैं। भगवान के सर्व खजानों पर हमारा अधिकार है। अब जो बहुत अच्छा चिंतन करते हैं, जो बहुत अच्छे योगी हैं, वो ध्यान दें, भगवान पर भी हमारा, बोलो जरा, भगवान पर भी हमारा, ये सबसे बड़ी बात हो गई। भगवान पे अधिकार, समझ सके तो समझ लेना। अब क्या करेंगे, भगवान पे अधिकार है तो क्या करेंगे, उसे बुला लिया करो। कहीं माया तंग करे, कहीं परिस्थितियां तंग करे, कोई आपसे लड़ने आ जाए, चोर डाकू आ जाए। पीछे बहुत चला था चोर डाकू का, और बाबा के बच्चों को बहुत अच्छे अनुभव हुए मदद के। कुछ और हो जाए, बाबा को बुलाओ, देखो क्या करता है वो, उस पर अधिकार। वो महावाक्य भूला रहता है बाबा के बच्चों को, जो स्लोगन भी लिखा हुआ हो सकता आपके घरों में भी हो। जब भी मुश्किलात आए, दिल से कहना और आगे आ जाओ मदद करो, और उसके आगे वाली तो भूल जाते हैं सब। बाप भी बंधा हुआ है मदद करने के लिए, भगवान बोल रहे हैं, कोई देहधारी मनुष्य नहीं, निराकार सर्वशक्तिवान, मैं भी बंधा हूं तुम्हें मदद करने के लिए। तो बांधना आता है, बंधने वाला बंधने को तैयार है। श्री कृष्ण को भी बांधती थी ना गोपियां, लो बांध लो, पर रस्सियां ही नहीं मिलती थी इतनी, सब छोटी पड़ जाए। दुर्योधन ने भी बांधना चाहा, हुआ ही नहीं। बांधो तुम, किसमें बंधेगा? प्यार में, रस्सियों में नहीं। प्यार और उसके साथ एक शब्द और जोड़ लो, भाई बोलो इधर वाले, अधिकार। अधिकार हुआ या नहीं? जब वो मेरा है, जब वो मेरा है तो उस पर अधिकार। प्यार और अधिकार की रस्सी में भगवान को बांधा जा सकता है। भक्त केवल प्यार जानते थे, और हम सब अधिकार भी रखते हैं। दोनों चीजें आ गई, प्यार भी और अधिकार भी। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, बहुत बड़ा अवसर मिल गया है। भगवान की इतनी समीपता मिल गई है, ये याद रखेंगे तो सहज योगी बन जाएंगे। योग के लिए खींचाता नहीं करनी पड़ेगी। मन भटक रहा है, मन नहीं लगता है, ऐसे करें या ऐसे करें, सूक्ष्म वतन में जाएं या परम धाम में जाएं, पहले कहां जाएं, ब्रह्मा के तन में याद करें या निराकार को याद करें, बाबा के रूम में याद करें या शांति स्तंभ पे करें। अनेक प्रश्न लोगों के उठते हैं, मैं क्या करता हूँ? करो, कहीं भी करो, इसमें क्या फर्क पड़ता है, करो तो सही। इस कंफ्यूजन में कोई करते ही नहीं, पहले परम धाम में जाए या सूक्ष्म वतन में। एक दीदी ने कह दिया पहले सूक्ष्म वतन हो गए फिर परम धाम जाना है, दूसरी ने कह दिया नहीं डायरेक्ट भी जा सकते हो, अब दोनों ही छोड़ दिए, क्या मतलब हम कहीं नहीं जाएंगे? ऐसा नहीं, सहज योग बाबा सिखा रहे हैं। किसी ने सिखा दिया, बस बाबा के चित्र के आगे बैठ जाओ, बाबा को देखते रहो, ये योग है। बोली बोली टीचर भी तो है ना कहीं। तो हम योग की गहराई को भी समझें और इसको सहज बनाएं, और सहज ये हो जाएगा, अपनों को याद करना सहज कठिन? प्रोग्राम बना के करना पड़ता है क्या? अपनों को, भगवान है अपना, प्यार का सागर हमारा है, ये गहरा नाता उससे जुड़ गया है। जोड़ ले जिन्होंने नहीं जोड़ा है, वो हमारा हम उसके। बात करते रहो उससे, बच्चा बना लो, फ्रेंड बना लो। बाप तो है ही, टीचर बनकर आया है, सदगुरु बनकर आया है, माँ बन गई है हमारा। देखो एक ही ऐसा है जिससे सब संबंध हैं, और जो हमारा संसार है। कल की मुरली में ये भी तो बहुत था, जब बाबा ही संसार है तो बुद्धि कहाँ जाएगी, पर संसार बने तब तो, अभी तो संसार लंबा चौड़ा है, उसको एक में समा देना ये थोड़ा सा सूक्ष्म विषय है। तो इसको सहज योग में बदलना है। नाता, नाता और श्रेष्ठ स्मृतियों को याद रखना। ये स्मृति शब्द समझ लें सर, बिल्कुल सिंपल। जो कुछ बाबा ने हमें याद दिलाया सृष्टि के आदि मध्य अंत का, उसे याद करना, इसको स्मृति कहते हैं। याद करते करते हम उसका स्वरूप बनते जाएंगे। जैसे तो बहुत सिंपल उदाहरण है, आप घर में बैठे हैं, हंसी खुशी में बैठे हैं, 10 साल पहले वाली कोई दुखद घटना याद आ गई, क्या हो जाएगा? चेहरा भी चेंज, आंखों से आंसू भी आ जाएंगे। बच्चे पूछेंगे, मम्मी अभी तो खुश थी, क्या हो गया? क्या उत्तर देंगे? बोलो ना, प्रैक्टिकल बात। कुछ याद आ गया, यही कहेंगे ना, भाई 5 साल की वो बुरी घटना याद आ गई थी। तो याद आते ही, याद माना स्मृति आई और स्वरूप बन गया, चेहरा वैसा ही हो गया ना, इसको कहते हैं स्मृति और स्मृति स्वरूप होना। सिंपल, समझ में आ गया? बाबा ने भी हमें याद दिलाया, उसे याद करना, और ये बात 5000 साल की है। इसमें हमारे पुनर्जन्म हो चुके हैं, तो ऐसी तो नहीं ना जो 5 साल की बात याद जैसे आती है ये भी आएगी। ये सूक्ष्म बात है, लेकिन जैसे जैसे हम देवान से न्यारे होते जाएंगे, दो बातें ध्यान देना, देवान से न्यारे वैसे वैसे स्मृतियां आने लगेंगी, और जैसे जैसे हमारी बुद्धि क्लीन होगी, क्लीन माना स्वच्छ, बुद्धि स्वच्छ, तो सभी को ये चीज मालूम होगी। कोई ये बात है, ये जो हमारा मस्तिष्क है ब्रेन, इसमें हमारा संपूर्ण 84 जन्म भी भरा हुआ है। ये बात सूक्ष्म बात है, अगर हम बुद्धि को स्वच्छ करेंगे और अशरीरीपन में रहेंगे, सोल कॉन्शियस होके रहेंगे, तो बुद्धि में जो भरा हुआ है वो जागृत होगा, इमर्ज होगा, हमें अपने सारे ही जन्म दिखाई देने लगेंगे, ये अंतिम स्थिति होगी। लेकिन जो पहले से ही बुद्धि को स्वच्छ कर लेंगे, उन्हें पहले से ही अनुभव होगा, वो तो गिने चुने योगी होंगे, लेकिन बाकी सबको एंड में जब बुद्धि बिल्कुल क्लीन हो जाएगी, तो फिल्म की तरह सारे जन्म सामने घूम जाएंगे, सारी स्मृति आ जाएंगी। स्मृति आते ही मोह नष्ट हो जाएगा, घर जाने को तैयार हो जाएंगे। मोह नष्ट ऐसे नहीं होता, चाहे बात माताओं की नहीं है, सबकी है, मोह हर व्यक्ति को है, चाहे पुरुष हो स्त्री हो। मोह तो उससे भी है जो कपड़े हमने पहने हुए, जो मास्क लगा लिया बहनों ने, उससे भी मोह है, होगा नहीं? खो गया तो ढूंढते फिरेंगे, 10 संकल्प चलेंगे, पता नहीं किसने चोरी कर लिया। मास्क अपना धोते हैं या नहीं? वो तो ने काला मास्क बना लिया इंडिया में सदा के लिए, इसको हाथ भी नहीं लगाना चाहिए, तो हाथ पे आ जाएंगे ना कीटाणु, हाथ पे धोएंगे नहीं, कभी उल्टा सीधा करके पहनते रहेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए मास्क का नियम ये है, दो रखने हैं, रोज एक धो देना, हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। नाक बंद करना तो मुझे पसंद नहीं, क्योंकि गंदी वायु वापिस जाती है, उसका रिजल्ट तो अच्छा नहीं रहेगा। तो हम सभी स्मृति स्वरूप हो जाएं। और लास्ट बात, अब जो पहली बात थी कल, स्वराज्य अधिकारी, इसकी सब प्रैक्टिस करेंगे, अभी से करेंगे सोने से पहले, और कल उठते योग में बहुत अच्छा करेंगे। कैसे? मैं आत्मा मस्तक सिंहासन पर विराजमान हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, राजा शक्तिशाली होगा ना, मास्टर सर्वशक्तिवान का अर्थ है मैं बहुत शक्तिशाली हूं, मोस्ट पावरफुल, मस्तक सिंहासन पर हूं, राजा हूं। संकल्प देंगे अपने को किसके राजा, मन बुद्धि संस्कार कर्मेंद्रियां ये देह सब इसके हम मालिक हैं। इस फीलिंग में बैठेंगे मैं मालिक हूं। मन बुद्धि को थोड़ा साधना है हमें, समझते हैं ना, साध देना, कंट्रोल में लेना है, मन से बात करना, हे मेरे मन मैं तुम्हारी मालिक हूं। अभी करो मेरे साथ साथ ये बात, हे मेरे मन मैं नहीं, मन में बात करेंगे बोल के नहीं, आप तैयार थे, बड़ी खुशी की बात है। देखें आत्मा अपने को यहां, हे मेरे मन मैं तुम्हारी मालिक हूं, तुम्हें मेरी आज्ञा के बिना कहीं नहीं जाना है, तुम हजारों साल से भटकते आए हो, अब शांत हो जाओ, तुम मेरे गुड फ्रेंड बन जाओ, भटकने से तुम्हें क्या मिला, अब स्थिर हो जाओ। बुद्धि से बात करें, हे मेरी बुद्धि तुमने अपने अंदर बहुत गंदगी भर ली है, अपने को स्वच्छ करो, तुम भी मेरी गुड फ्रेंड बन जाओ, मुझे तुम्हारे अंदर वरदान समाने हैं, भगवान को बैठाना है, शक्तियां भरनी हैं, प्योरिटी का खजाना भरना है, अपने को क्लीन करो। ये बातें करेंगे रोज अपने से, ऐसे तो मन बुद्धि स्वीकार कर लेंगी कि हम उनके मालिक हैं और हमारी आज्ञाओं के बिना उन्हें कहीं नहीं भटकना है। हे बुद्धि मुझे तुम में ज्ञान खजाना भरना है, स्वच्छ करो अपने को। बात करेंगे जैसे हमारे दो छोटे बच्चे हैं, उन्हें हम ऑर्डर दे रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं, भागदौड़ करने से मना रहे हैं, तो बहुत अच्छा अनुभव होगा। तो अपने को मस्तक सिंहासन पर देखेंगे, मैं बहुत शक्तिशाली हूं, मुझसे किरणें फैल रही हैं, और थोड़ा अभ्यास किया करें, ये किरणें मेरे ब्रेन में जा रही हैं, मस्तिष्क में जा रही हैं, शरीर में भी फैल रही हैं, अंग अंग को शीतल कर रही हैं। तो जितना स्वयं पर राज होगा बच्चों पर सहज राज होगा, मानेंगे आपकी बात। आप कहीं डिपार्टमेंट के हेड हैं, बड़ी पोस्ट पर हैं, आपके डिपार्टमेंट वाले आपकी बात सहज ही मानेंगे, सहज कंट्रोल होगा, और जो स्वराज अधिकारी बनेंगे वही विश्व राज अधिकारी बनेंगे, प्रकृति के मालिक बनेंगे, प्रकृति भी उनको सम्मान देगी, उनकी बात सुनेगी। तो सोते हुए भी कर लेना, आपसे शुरू हो गया है, उठते ही करना। ओम शांति।